यशाया अध्याय 61। यशाया की पुस्तक अध्याय 61 खोलें। नए नियम में ऐसा कहा गया है कि पुराने नियम के भविष्यद् वक्ता प्रायः ऐसी बातें लिख दिया करते थे जिन्हें वे स्वयं ही समझ नहीं पाते थे। वे तो हृदय से इच्छा रखते थे कि उन बातों को समझे, परंतु वे परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में लिखा करते थे। अतः हम देखते हैं कि वे मसीह की देह के निर्माण में परमेश्वर के काम को समझ नहीं पाए थे। ये है अन्य जातियों की मसीह कलीसिया। प्रेरित पौलुस ने कलीसिया और हम में अंतरवासी मसीह के विषय में कहा है कि ये एक भेद की बात जो आरंभ से गुप्त थी परंतु आज प्रकट की गई है। अतः ये भेद नया नियम के लेखकों और प्रेरितों के आगमन तक गुप्त था, पुराने नियम के लेखकों के लिए भी अप्रकट था। भविष्यत वक्ता अपनी भविष्यवाणियों में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई तथा कामों के संबंधित दोनों पहलू में सदैव एक ही शब्दावली में उलझ गए हैं। अतः जब वे मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी देते हैं, तब वे उसके दूसरे आगमन में भी पहुंच जाते हैं। ये कभी कभी तो एक ही वाक्य में होता है या एक गदांश में होता है। उन्होंने इस अंतर को स्पष्ट नहीं देखा, अर्थात वे ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि मसीह का आगमन दो बार है। इसका कारण था कि उनके विचार बेमेल थे। उन्होंने मसीह के वैभवशाली राज्य और दाऊद के सिंहासन पर उसके बैठने के विषय में लिखा और ये भी लिखा कि संपूर्ण विश्व यरूशलेम की ओर आएगा। दूसरी ओर उन्होंने ये भी लिखा कि मसीहा का त्याग किया जाएगा, उसका तिरस्कार किया जाएगा, वो दुखी मनुष्य होगा, उसका रोग से परिचय होगा, परंतु वे इन बातों के समझने में सक्षम नहीं थे। इसका कारण था कि वे शास्त्र हमारे लिए लिखे गए थे। आप दानियल की पुस्तक को ही ले लीजिए। जब दानियल बुद्धि की याचना कर रहा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा, दानियल इस पर मोहर लगा दे, ये अंत समय के लिए है, ये तुझे समझने के लिए नहीं दी गई है, तेरा काम केवल इन्हें लिखना था, तूने अपना काम कर लिया है, अंत समय में ज्ञान में वृद्धि होगी, मैं इन बातों की समझ प्रदान करूंगा। इस प्रकार हम देखते हैं जब हम बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं जो आज हमारे विकसित ऐतिहासिक ज्ञान के प्रकाश में भी है, तब हम भूतकाल में देखते हुए मसीह के आगमन को देख पाते हैं। हम उसे तिरस्कृत और परित्याग देख सकते हैं, जिसके आधार पर हम उसके फिर से आने की आशा भी रख सकते हैं। हम उन घटनाओं को भी देखते हैं जो मसीह के फिर से आने के लिए संबंधित है। अब हम कह सकते हैं, ओ यही तो दानियल कह रहा था, हाँ हाँ मैं आज उसे स्पष्ट देख पा रहा हूं। इस प्रकार ये वेद इन दिनों में हम पर प्रकट हो रहे हैं। यशाया अध्याय 61 में जब हम मसीह के विषय में भविष्यवाणी पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिए कि यशाया ने मसीह के दोनों आगमन एक दूसरे में उलझा दिए हैं। परंतु चूंकि यीशु अपने दोनों आगमन का समय जानता था, उसने धर्मशास्त्र का केवल वही भाग पढ़ा और वो रुक गया। उसने पुस्तक बंद की और कहा, लूका अध्याय 4:21, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यदि वो आगे पढ़ता तो वो उसके दूसरे आगमन के संबंधित होता, जब तक वो फिर से ना आएगा। अतः अपनी सेवकाई के प्रथम भाग को समझाने और पहचानने के कारण उसने आगे नहीं पढ़ा, उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। अतः क्या पूरा हुआ और क्या पूरा होना शेष है? जो पूरा हुआ वो ये है, यशाया अध्याय 61 पद 1, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। इसका सीमित अर्थ तो ये है कि ये भविष्यवाणी यीशु और उसकी सेवकाई से संबंधित थी, क्योंकि उसे आत्मा का अभिषेक प्रदान किया गया था और वो दीन जनों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता था। अब ध्यान दीजिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदीगृह में था, और विशेष ध्यान देने की बात तो यह है कि वो भी भविष्यवाणियों द्वारा असमंजस में था। अतः वो भी यही सोच रहा था कि मसीह यीशु उसी युग में पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदीगृह में प्रतीक्षा करते करते थक गया। तब उसने अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजा और पूछवाया कि क्या वही वो मसीहा है जिसकी वे बाट जो रहे हैं, या वे किसी और से आशा लगाए। दूसरे शब्दों में कि वो अब खुलकर सामने आएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदीगृह में रहते रहते थक चुका था। वो जानता था कि मसीहा केवल यीशु ही है, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार उसने यीशु पर ही पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखा था, जब उसने उसे बपतिस्मा दिया था। परंतु उसने देखा कि यीशु रोमियों का तख्ता पलटकर अपना राज्य स्थापित नहीं कर रहा है। तब उसने निराश होकर अपने चेले उसके पास भेजे और पूछवाया कि क्या वे उसकी बाट जोते रहे या किसी और की। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया। उसने उसके चेलों के समक्ष अनेकों की आंखें खोली और बहरों को चंगा किया और लंगड़ों को चंगाई दी, और उसके चेलों से कहा कि वे अपने गुरु से कह दे कि उन्होंने क्या देखा है। दूसरे शब्दों में कह दे कि भविष्यवाणियां वो पूरी कर रहा है। यूहन्ना, तू धर्मशास्त्र जानता है, तू परमेश्वर का वचन जानता है, मैं धर्मशास्त्र की भविष्यवाणियां पूरी कर रहा हूं, और तुझे सीधे उत्तर की आवश्यकता नहीं है कि मैं कहूं हां मैं ही मसीहा हूं। अतः उसने यूहन्ना के चेलों से कहा कि जो तुमने देखा है यूहन्ना से कह दो। वो धर्मशास्त्र का ज्ञाता है, वो खुद ही समझ जाएगा कि वो मैं ही हूं, उसे किसी और की तरफ देखना नहीं है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु ने कहा था, मरकुस अध्याय 2 पद 17, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। लूका अध्याय 19 पद 10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मैं मसीह यीशु की सेवकाई में रुचि रखता हूं। उसका स्वभाव उनके प्रति जो उद्घोषित और स्वीकृत पापी थे, तथा उसका स्वभाव उनके प्रति जो धर्मी कहलाते थे। उस स्त्री से उसने कैसी दया दिखाई जिसे व्यभिचार में पकड़ा गया था, उसके अनुग्रह की समझ को दर्शाया। यूहन्ना अध्याय 8 पद 10 और 11, हे नारी वे कहां गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। ओह, उसके साथ उसका व्यवहार कैसा मधुर था। यीशु मसीह थका हुआ था, आराम करने के लिए वो कुएं पर बैठ गया। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। वो एक चरित्रवान स्त्री नहीं थी, वो 5 पति कर चुकी थी और संभवतः ये निर्णय लेकर कि वो विवाह के योग्य नहीं किसी और व्यक्ति के साथ रह रही थी। आज बहुत लोग सोचते हैं कि वे मॉडर्न हैं और ऐसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य आरंभ से ही अनैतिक है, परंतु यीशु उस स्त्री पर अनुग्रह का कैसा प्रदर्शन करता है और उसे दिखाता है कि वो कौन है। तभी तो उस स्त्री ने कहा, यूहन्ना अध्याय 4:25-26, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। ओह, पापियों के प्रति मसीह का व्यवहार सदैव मधुर था। पाप में पड़े व्यक्ति के लिए तथा जिन्होंने पापों को स्वीकार किया तथा अपनी पापी अवस्था का बोध किया, उनके लिए उसके पास सदैव शुभ संदेश था। वे जो अपने आप को धर्मी समझते थे, उनके लिए उसके पास निंदा की अपेक्षा कुछ नहीं था। वो उनके साथ कठोर था। शास्त्रियों, फरीसियों और ढोंगियों, तुम पर हाय। ओ, उसने उनकी कैसी भर्त्सना की। यदि आप सोचे, मृदु भाव यीशु, नम्र और दीन इस बच्चे को देखता है, तो आप मती के सुसमाचार 22 अध्याय को पढ़ें तो आप उसके उस स्वभाव को देखेंगे जो वो कथित धर्मियों और अभिमानियों के प्रति रखता था। परंतु प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यशाया अध्याय 61:11, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मेरे विचार में इस पद का ये भाग मसीह की उस सेवकाई से संबंधित है जो उसे उनके मध्य करनी थी, जिनकी मृत्यु यीशु मसीह के आने से पहले हो चुकी थी। कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। पत्रस समय बताता है कि मसीह ने बंदी आत्माओं में प्रचार किया। पौलुस कहता है कि जिसका पुनरुत्थान हुआ है, ये वही है जो सबसे पहले पृथ्वी के निचले भागों में गया था। जब उसका पुनरुत्थान हुआ, तब वो बंदियों को बंधुआई से छुड़ा लाया। इब्राहिम से पहले ही ऐसे लोग रहे हैं जिन्हें परमेश्वर में विश्वास रखने के कारण धर्मी गिना गया था। इब्राहिम इनका प्रतीक माना जाता है। जिन्होंने परमेश्वर में विश्वास किया और भरोसा रखा, वे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की प्रतीक्षा में थे। इब्रानियों अध्याय 11 में लिखा है, इब्रानियों अध्याय 11:13, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। वे प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहे। मैं केवल यहां पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हूं। मैं यात्रा कर रहा हूं, ये मेरा जीवन नहीं है। मैं तो उस नगर की बाट जोता हूं जिसकी नेव और बनाने वाला परमेश्वर है। वे सब परमेश्वर के इस महिमा के राज्य की प्रतीक्षा में थे। वे सब परमेश्वर के राज्य की महिमा की प्रतीक्षा करते करते मर गए थे। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर अपना महिमामय राज्य स्थापित करेगा। वे विश्वास में ही मर गए। उन्होंने प्रतिज्ञा प्राप्त नहीं की। इब्रानियों अध्याय 11:40, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। बछड़ा और बकरियों के रक्त द्वारा पापों की मुक्ति प्राप्त करना उनके लिए संभव नहीं था। इसके लिए क्रूस पर यीशु के बलिदान की आवश्यकता थी। अतः पुराने नियम के अनुसार बलिदान के लहू ने उनके पापों को ढांप लिया था, परंतु उसका निवारण नहीं किया था। अतः उन्हें यीशु के बलिदान की प्रतीक्षा करनी थी कि वे स्वर्गिक स्थान में पहुंचे। अतः पत्रस हमें बताता है कि मरणोपरांत यीशु अधोलोक में उतरा। पत्रस यीशु मसीह के वहां जाने के उद्देश्य का उल्लेख भी करता है कि वो वहां उन आत्माओं में प्रचार करने गया था जो कभी अनाज्ञाकारी थी, परंतु उन्होंने परमेश्वर में विश्वास किया और श्रद्धा दर्शाई। पौलुस कहता है कि जब वो ऊपर आया तब वो उन बंदी आत्माओं को भी अपने साथ लेकर आया। मती रचित सुसमाचार अध्याय 27 में लिखा है कि जब वो मृतकों में से जी उठा तब अनेक कब्रें खुल गई थी और पवित्र जन यरूशलेम की सड़कों पर चलते देखे गए थे। उनको बंदीगृह से मुक्त करा दिया गया था। अतः यीशु के प्रथम आगमन का एक उद्देश्य ये भी था कि बंदी आत्माओं को वो मुक्त कराए, क्योंकि यीशु ने कहा था योहन्ना अध्याय 11 25 और 26 पर, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ में विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। हमारा रूपांतरण तो अवश्य होगा, इस नश्वर देह को अनश्वर देह में परिवर्तित होना है, इस नाशवान को अविनाशी होना है। मैं जानता हूं कि जब मेरा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो मुझे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। इस घर में तो मैं कहराता और बड़ी लालसा रखता हूं। यहां तो सुबह बिस्तर से उठना ही भारी पड़ता है। सुबह सुबह सबसे पहले तो मेरा दहना पांव दुखता है। मुझे उससे छुटकारा पाने के लिए पहले तो कुछ कदम चलना पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस आयु तक पहुंचूंगा। सुबह सुबह चलने की समस्या, ये कैसा डेरा है, ये समाप्त होता जाता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे पास परमेश्वर का घर है जो हाथों से बनाया नहीं गया है। ये स्वर्ग में है और अनंत है। एक दिन मैं मर जाऊंगा। मैं इस डेरे से निकलकर परमेश्वर के उस महिमा के घर में प्रवेश करूंगा, वो घर जो उसने मेरे लिए तैयार किया है। अतः ये उसके प्रथम आगमन का उद्देश्य था, यशाया अध्याय 61 पद 2, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का, ये परमेश्वर के प्रसन्न रहने का दिन है। परमेश्वर द्वारा आपके उद्धार के निर्धारित समय, यहां तक पढ़कर यीशु ने पुस्तक बंद कर दी, क्योंकि इसके प्रथम आगमन का उद्देश्य यही तक सीमित था। यशाया मसीह के द्वितीय आगमन को न समझ पाने के कारण यूं घोषणा करता है, यशाया अध्याय 61 पद 2, हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। ये तो एक भावी घटना का उल्लेख है। परमेश्वर का पलटा लेना उस दिन होगा जब उसका क्रोध पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। ज्यों ही मेमना मोहरे खोलेगा त्यों ही परमेश्वर का पलटा लेना पृथ्वी पर आरंभ होगा, और उसे ही महाक्लेश का समय कहा गया है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मनुष्य प्रधान और मंत्री सब चट्टानों और पहाड़ों को पुकार कर कहेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 16 और 17, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। परमेश्वर का पलटा लेने का समय ये अभी नहीं होगा, ये तो एक भविष्य में घटित होने वाली घटना है जो महाक्लेश के समय होगी। मेरे विचार में ऐसी स्थिति में कलीसिया पर जब परमेश्वर अपने क्रोध को उंडेलेगा, तब यहां कलीसिया की उपस्थिति को स्वीकार करना असंगत बात है। पौलुस रोमियो की पत्री अध्याय 5 पद 9 में बताता है कि हम क्रोध के लिए नहीं रखे गए हैं। वो फिर से पहला तिस्लोनिकियों अध्याय 5 पद 9 में बताता है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं रखा है। मेरे विचारों में ये परमेश्वर के स्वभाव के अनुरूप नहीं है कि मसीह द्वारा हमारे पापों के लिए परमेश्वर के क्रोध के उठाए जाने के पश्चात भी हम महाक्लेश के युग में परमेश्वर के क्रोध को सहन करेंगे। आप परमेश्वर की संतान होने के कारण जब तक मैं इस परदेशी संसार में हूं, मुझे क्लेश तो सहना ही होगा, यीशु ने भी कहा है, यूहन्ना अध्याय 16 पद 33। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु डाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम रखता, क्योंकि तुम उसके अनुरूप होते। क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, इसलिए लोग तुमसे घृणा करते हैं। उन्होंने मुझे ग्रहण नहीं किया है, तो वो तुम्हें कैसे ग्रहण करेंगे? वे मुझसे घृणा करते हैं, वे तुमसे भी घृणा करेंगे। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है। अतः परमेश्वर की संतान होने के कारण मैं इस परदेश में परमेश्वर की संगति में चलता हूं, तो मुझे कष्टों की अपेक्षा तो करनी ही है। ये तो उतना भयंकर नहीं होगा जितना परमेश्वर का क्रोध होगा जब वो महाक्लेश के समय उंडेला जाएगा। यहां सबसे बड़ा अंतर यह है कि मेरा क्लेश शैतान द्वारा उंडेला जाता है, और जिस क्लेश का सामना संसार करेगा वो परमेश्वर का क्रोध होगा। परमेश्वर ने कहा है रोमियो अध्याय 12 पद 19, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। सो हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, यशाया अध्याय 61 पद 2, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं परमेश्वर के राज्य में, यशाया अध्याय 61 पद 3 और 4, और सियोन के विलाप करने वालों के सर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश कर ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे, उस देश का पुनरुद्धार, यशाया अध्याय 61 पद 4। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हो, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। और निश्चय ही आज हम उस दिन का आरंभ देखते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि आज हम जो देखते हैं वो यशया की इस विशेष भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है, क्योंकि ये भविष्यवाणी परमेश्वर के राज्य की भविष्यवाणी है। आज जो भी विकास हो रहा है वो नाश हो जाएगा। दुर्भाग्य से इसराइल दो प्रमुख युद्धों की रणभूमि होगा। अति संभव है कि विश्व के इतिहास की दो सबसे बड़ी और खूनी लड़ाइयां उस क्षेत्र में होंगी। वहां आज जो शानदार निर्माण हो रहा है वो सब नाश हो जाएगा। ये भविष्यवाणी इन युद्धों के पश्चात के पुनरुद्धार की है, जब पीढ़ियों का उजाड़ा हुआ ध्वस्त किया हुआ क्षेत्र फिर से बसाया जाएगा। यशाया अध्याय 61 पद 5। परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे। जब परमेश्वर इसराइल राष्ट्र का पुनरुद्धार करेगा, आपने अनेक लोगों और प्रचारकों को संपूर्ण जगत के पुनर्स्थापना के बारे में बोलते हुए सुना कि परमेश्वर अंत में सबका उद्धार करेगा, कोई नहीं रह जाएगा। शैतान भी अपना मन परिवर्तन करके परमेश्वर की संतान बन जाएगा। बाइबल का विचार इस विचार से भिन्न है। यहां परमेश्वर केवल इसराइल के पुनर्स्थापना के विषय में कह रहा है। वे एक भ्रष्ट पत्नी के स्वरूप जुदा कर दिए गए थे, परंतु परमेश्वर उन्हें फिर से लेकर आएगा। ऐसा ही चित्रण होशे ने अपने भविष्यवाणी में दिया है। परमेश्वर ने होशे से कहा, जाकर एक पत्नी ले आओ। उसने स्त्री से विवाह किया और उसकी दो संतान उत्पन्न हुई। उसने एक और संतान को जन्म दिया और उसका नाम लो अमी रखा गया, अर्थात मेरी संतान नहीं। अंत में उसकी पत्नी जाकर वेश्यावृत्ति में पड़ गई। उसका जीवन किसी व्यक्ति से प्रेम करने के कारण नाश हो गया था। परमेश्वर ने होशे से कहा, जाकर अपनी पत्नी का मूल्य चुकाकर उसे फिर से ले आ, उसे मुक्त कर ले। वो दासी बन चुकी है, अतः उसे मुक्त करा। उसे धोकर साफ कर, उसका शोधन करके उसे फिर से अपनी पत्नी बना। इस सचित्र उदाहरण के द्वारा परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया था कि वो इसराइल को पुनः अपने घनिष्ठ संबंध में ले आएगा। वो उन्हें ऐसा प्रेम प्रदान करेगा जैसा एक पति अपनी पत्नी को प्रदान करता है। वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे। यशाया अध्याय 61 पद 5 और 6। और विदेशी लोग तुम्हारे चरवाहे और दाख की बारी के माली होंगे, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे। उनके विभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। सेवक शब्द का यहां अर्थ है सेवा करने वाला। ये ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि हम प्रायः इस शब्द को पदवी समझ बैठते हैं जो मनुष्य को बड़ा बनाती है। ओह, वो एक सेवक है। इसका वास्तविक अर्थ है दास। यही ठीक है। सेवक अपने आप को दास समझे। मैं भी कभी कभी सोचता हूं मैं एक सेवक हूं। मुझे विशेष सुविधाएं प्राप्त होना चाहिए, मुझे आगे आगे रखा जाना चाहिए क्योंकि मैं सेवक हूं। परंतु ये सेवक शब्द के वास्तविक अर्थ से सुसंगत नहीं है और ना ही यीशु द्वारा दी गई सेवक की परिभाषा से मिलता है। यीशु ने स्पष्ट कहा है कि यदि आप बड़ा बनना चाहते हो तो सेवक या दास बनो। उसने सेवकाई का प्रशिक्षण भी दिया। उसने अंगोचा बांधकर सब शिष्यों के पैर धोए। यदि मैं तुम्हारा प्रभु होकर तुम्हारा दास बन सकता हूं तो तुम भी यही करना सीखो। अतः ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक दूसरे की सेवा के द्वारा परमेश्वर की सेवा करें। मत्ती अध्याय 25 पद 40। तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। प्रभु के नाम में एक ग्लास ठंडा पानी पिलाना। परमेश्वर इस सेवा का प्रतिफल हमें देता है। कुलुसियों अध्याय 3 पद 17। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। काम ऐसा करो कि जैसे प्रभु के लिए कर रहे हो और प्रतिफल आपको प्रभु से प्राप्त होना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लेखक भूमिका देते हुए यीशु के विषय में कहता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। ये कहे कि हमारे परमेश्वर के लिए याजकों का राज्य तो उचित होगा। अतः परमेश्वर के राज्य के युग में कलीसिया की सेवा और कार्य का ये एक भाग होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह पिता के दैने हाथ से पुस्तक लेता है और वहां एक नया गीत गाया जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:9-10, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। अतः इस महिमा के राज्य के युग में कलीसिया का स्थान याजकों के राज्य स्वरूप होगा, जो प्रभु के साथ पृथ्वी पर न्याय कर रहे होंगे। अतः आपको नाम दिया जाएगा प्रभु के याजक। मनुष्य आपको परमेश्वर के सेवक कहा करेंगे। यशाया अध्याय 61:6-9 और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे, उनके विभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे, तुम्हारी नाम धराई की संति दूना भाग मिलेगा, अनादर की संति तुम, इसराइल के बारे में फिर से बात कर रहा है, अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा, उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी, जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। जब परमेश्वर अपने अनुग्रहित राष्ट्र स्वरूप इसराइल का पुनरुद्धार करेगा, तब परमेश्वर के अनुग्रह और अनुकंपा को विश्व ख्याति प्राप्त होगी। यशाया अध्याय 61:10, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है। ये पुनरुद्धार के लिए दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के प्रतिक्रिया है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है। यशाया अध्याय 61:10-11, जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना सिंगार करती है, क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वो उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। ओह, प्रभु की महिमा का वो दिन, हम उसकी कैसी आशा और प्रतीक्षा करते हैं। जब मैं संसार को देखता हूं और उसके कामों को देखता हूं, तो यूहन्ना के साथ प्रार्थना करता हूं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 20, हे प्रभु यीशु आ। इस समय हम कुछ ऐसी बातों का उल्लेख करेंगे जो मानवीय आनुवंशिक रचना के क्षेत्र में वैज्ञानिकों की छेड़छाड़ का परिणाम है तथा वैज्ञानिकों के उद्देश्यों को भी देखेंगे। अब कुछ कार्य जो वो करने जा रहे हैं चौंकाने वाले काम है। वे जिन प्राणियों को इस अनुसंधान द्वारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं वे वास्तव में संसार में चौंकाने वाली बातें हैं। इस प्रकार आप सोचने पर विवश होते हैं कि परमेश्वर कब तक ऐसा होने देगा। अतीत में भी मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया था, परंतु जब जब भी मनुष्य इस क्षेत्र विशेष में आगे बढ़ना चाहा, परमेश्वर ने उसे कहा बस, और वो शांत होकर बैठ गया। नूह के युग में जल प्रलय से पूर्व भी राक्षस थे। परमेश्वर ने उनका विनाश करके फिर से नूह के परिवार द्वारा नई मानवता का विकास किया। यहां बड़ी रोचक बातें हैं जो विज्ञान की दृष्टि से भूतकाल और भविष्यकाल संबंधी है।